दम जरिया इलाज, इसमें से आज हम अगला सेशन लेंगे। हम लोग जादू का इलाज सीख रहे हैं कि किस तरह से अगर किसी पर जादू हो जाए या उसको शक पड़ता है कि मेरे ऊपर या किसी दूसरे के ऊपर जादू हुआ है तो क्या करें। इसमें अभी तक जो कुछ किया उसका खुलासा क्या है कि कुछ आयात कुरान पाक की ऐसी हैं कि जो हमें हदीस से मिलती हैं कि उनको पढ़ा जाए तो जादू जिस पर होता है वो उसके असर से बाहर आ जाता है। उन आयात को हमने देखा और हमने इसमें ये भी देखा था कि जब भी कोई जादू का कोई असर दिखे, कोई चीज़ है किसी के ऊपर, किसी का कोई यानी शक है, तो वो चीज़ ज़ाया कर दें। घर में से कोई तावीज़ निकल आता है, कोई किसी तरह का पुतला है, कहीं खून के छींटे पड़ते हैं, कभी घर में कपड़े कटे हुए दिखते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती, तो ऐसे वक्त में ऐसी चीज़ों को फिर ज़ाया कर देना चाहिए, वो रखनी नहीं चाहिए। फिर इस तरह से ये आयात जो हमने मुख्तलिफ आया मुकामात की पढ़ी, अब आज हम इससे आगे चलेंगे पेज नंबर 14 पे कि अब इसके बाद और क्या करें। तो पेज नंबर 14 है, देखिएगा ज़रा। सूरत फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरत बकरा की आखिरी दो आयतें, सूरत अखलास और मौवज़तैन। देखिए आप ये सारे लफ्ज़ सही पढ़िए, मैं दोबारा पढ़ती हूँ, देखिएगा। हमारे कल्चर में मौवज़तैन को मौवज़तैन कहते हैं, तो अगर आप में से कोई पहली दफ़ा ये नाम सुन रहे हैं तो आप अपनी बुक पे इनके साथ साथ आराब लगा लीजिए तो आपको इंशाल्लाह पढ़ने में आसानी होगी। पहली चीज़ है आयतुल कुर्सी, फिर सूरत बकरा की आखिरी दो आयतें, फिर सूरत अखलास। अरबी ज़बान में अफ अल अफ आल बाब होता है, बाब इफ़ाल भी है जी, बाब इफ़ाल पे अगर लेंगे तो सूरत इखलास, ठीक है। और मुआवज़ा तईन, ड्यूल है, तस्निया है, दो वो चीज़ें जिनके साथ पनाह ली जाती है। और मुआवज़ा तईन कॉमन नेम है सूरत फलक और सूरत नास का, ठीक है। तो इनको तीन या इससे ज़्यादा मरतबा पढ़े और दाएं हाथ तकलीफ वाली जगह पर रखे और फूंक मारे। क्या करना है? सूरत फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरत बकरा की आखिरी दो आयतें, सूरत इखलास और मुआवज़तैन पढ़ें, तीन दफ़ा पढ़ लें। आपका दिल करता है तीन से ज़्यादा पढ़ना है, पांच दफ़ा पढ़ लें। ताक दफ़ा पढ़ना अल्लाह के नबी सल्लम से साबित है। फिर उसके बाद क्या करें, दायां हाथ, ये देखिए राइट हैंड जो है ना, इसको तकलीफ वाली जगह पर रखें। आपको पता है कि जादू के बाज़ जिस्मानी असरात होते हैं ना, किसी के पेट में दर्द है, सर में दर्द है, तो वहाँ हाथ रख कर ना तो उस पर बस ऐसे फूंकते हैं। अब आपके अच्छा ये यहाँ पढ़ लिया, अब इसको पानी में डालूँ, फूके मारूँ, फिर पिलाऊँ, बस कोशिश करें कि जो इलाज जिधर जितना है वैसे ही करें। देखिए ना, डॉक्टर्स को गोली देते कहते इसको खाओ, किसी चीज़ को कहते हैं इसको पानी में घोल के खाना है, किसी चीज़ को वो कहते हैं कि इसको दर्द वाली जगह पे मलना है, मालिश करनी है, तो अब आप मालिश की जाने वाली चीज़ को खाते तो नहीं है ना, तो लिहाजा हर चीज़ को फूंक कर पानी पे पड़ना पीना ये भी दुरुस्त तरीका नहीं। बस जिस तरह की बात हमें मिल जाए वो रखे, और ये बुखारी के अल्फाज है तो मुस्लिम में भी ये हदीस मौजूद है, दोनों का रेफरेंस नीचे मौजूद है, तो लिहाजा पढ़ के देखें। शर्त क्या है? आपके अंदर यकीन हो कि ये करना है, ये होगा, और अगर बगैर यकीन के करेंगे तो फिर जो भी होगा वो आप जानते हैं। फिर उसके बाद दम, तावुज़ात और जामे दुआएं। अब कुछ चीज़ें हैं जो आप दुआ के तौर पे पढ़ सकते हैं इन दिनों में, वो कौन सी दुआएं हैं मैं पढ़ाऊंगी आपको। ये यकीन करें इतनी अक्सीर दुआ है जो भी हम पढ़ने लगे हैं, मैं सिर्फ ये दुआ बाज़ दफ़ा किसी को सुनाने के लिए भी उसकी आदत करना पसंद करती हूँ। कहीं जा नहीं सकते, कोई दूर है, आउट ऑफ टाउन है, तो आप व्हाट्सएप पे, वाइबर पे, फ़ोन पे उसको ये दुआएं सुना दें। हदीस में क्या आता है, सात मरतबा जिसने ये दुआ जो भी हम पढ़ने लगे हैं मरीज़ को पढ़ के सुना दी। अब फूकनी नहीं है, आपने पढ़नी है और मरीज़ ने सुननी है, तो फरमाया कि अगर उसकी मौत का वक्त नहीं आया ना तो अल्लाह ताला उसको सेहत दे देगा। हम कितना अपने बेचारे दोस्तों और रिश्तेदारों की बीमारियों पे कुढ़ते और जलते रहते हैं लेकिन हम उनके लिए इन चीज़ों का एहतमाम नहीं करते, तो लिहाजा ये चीज़ें करना हमें उनके लिए भी फ़ायदा का ज़रिया बनाएंगी और हमें वहाँ जाने का फ़ायदा भी होगा। हमारे कल्चर में ये बहुत कम है कि किसी मरीज़ की आदत इस सोच से कीजिए कि आप उसको दुआ दें। लाबास तहुर इंशाअल्लाह दुआ अल्लाह के नबी दिया करते थे, इसी तरह ये भी दुआ है और भी दुआएं। हम अमूमन जाके हाल अहवाल पूछने और मरीज से ही सारे दुख सुख सुनते हैं, अच्छा सुनाओ क्या हुआ, फिर किधर हुआ, फिर दर्द किधर है, फिर डॉक्टरों ने क्या कहा है, अच्छा फिर ऑपरेशन कब है, यानी वो हमारी बातों के जवाब दे दे के बेचारा मजीद बीमार हो जाता है। तो तरीका क्या है, इबादत करने जाएं, नीयत दिल में रखें कि मैं जन्नत के मेवे खाऊंगा। हदीस में आता है कि जो जब तक किसी मरीज के पास बैठा रहता है तो वो जन्नत के फल खाता रहता है। फिर 70,000 फरिश्ते उसके लिए मगफरत की दुआ करते हैं, और क्या चाहिए, क्या यहाँ से किसी हॉस्पिटल तक जाना और वहाँ 10-15 मिनट किसी मरीज के साथ वक्त गुजारना मुश्किल है? बदले में 70,000, 1, 2, 3 गिने 70,000, तो शायद उतना ही टाइम ही लगते हैं, 2-2.5 घंटे, 1, 2, 3 से लेकर 70,000 तक गिने, वो आपकी बख्शीश की दुआ करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम हमारी सोच बदल देता है, आपके नफ़े और नुकसान के पैमाने बदलने लगते हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ बदलने लगती है, आपकी ज़िंदगी का एक नया रंग आपके सामने आता है, और यही इस्लाम की वो यूनिक चीज़ है जो दूसरे अदियान से इंसान को अलग करती है। बात चूँकि हो रही है तो थोड़ा सा इस पे मज़ीद आपकी मदद कर दूँ। आप देखिए कि आम दूसरे दीन जो होते हैं उसमें दीन का या नेकी का तसव्वुर क्या है? मसलन क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियंस की नज़र में वो शख्स बहुत दीनदार है जो हर संडे के संडे चर्च में जाएगा और वहाँ जाकर इबादत करते हैं, या वहाँ जाके जो भी उनके नॉर्म्स हैं, या हज़रत ईसा की मोहब्बत में कुछ सॉन्ग्स गा ले, या वहाँ जाके उनकी बाइबल का कोई वाज सुन ले, कुछ भी सुन ले, बस दैट्स इट। जो हर संडे जाएंगे ना वो कहेंगे ये बहुत रिलीजियस है। ज्यूस में सैटरडेज को चले जाइए, बस एक दिन चले गए काफ़ी है। इसी तरह मैंने देखा है अक्सर लोगों को, बल्कि मतलब जिस तरह डिफरेंट लोगों के अपने अकीदे होते हैं, मतलब हिंदुइज्म में क्या होता है, सुबह उठते ही जाकर अपने घर के अंदर ही छोटे छोटे उन्होंने मंदिर बनाए होते हैं, बुत रखे होते हैं, उसके सामने जाके एक छोटा सा तिलक लगा देना देवी को, या वहाँ से लेकर शादीशुदा औरतें मांग में सिंदूर भर लेती हैं, बस उनके लिए ये चीज़ें काफ़ी होती हैं। आप इस्लाम की एक चीज़ देख रहे हैं, कर क्या रहे आप किसी बीमार की इयादत? सरासर दुनियावी काम है, और मेरा नहीं ख्याल कि किसी मजहब में भी लोग बीमार की आदत ना करते हो, सारे करते हैं ना। इस्लाम आदत को इबादत में बदल देता है। आपकी जो आदत है, जो आपकी डे टू डे लाइफ है, उसको इस्लाम इबादत बनाता है और अजर मिलता है। तो आज के बाद जब भी किसी बीमार के बारे में सुने, इस सोच के साथ उसकी आदत करने जाएं कि मुझे इससे फायदा होगा, ठीक है? अब आप मेरे साथ दोहराइएगा, मैं आपको याद करवाना चाह रही हूँ, ये दुआएं जुबानी आती हों फिर ही बंदा पढ़ता है, वरना बुक्स तो हर वक्त पास नहीं होती। क्या है अल्फाज? अस्अलुल्लाहल अजीमा रब्बल अर्शिल अजीमी अय्यश्फियका, अस्अलुल्लाहल अजीमा रब अर्शिल अजीमी अय्यश्फियका। कितनी दफा पढ़नी है? 7 बार पढ़नी है। और क्या मरीज पे पढ़ के फूके मारनी है? नहीं, बस बैठ के जैसे अभी हमने पढ़ी है इसी तरह मरीज को आपने वो सुना देनी है, ठीक है? इसका तर्जमा नोट कीजिएगा, लफ्ज पर लफ्ज बोलती हूँ आपके साथ। अस्सलुल्लाह, मैं सवाल करता हूँ अल्लाह से, या मैं सवाल करती हूँ अल्लाह से। अल अजीमा, जो बहुत बड़ा है। रब्बल अर्शिल अजीमी, रब है बहुत बड़े अर्श का, यानी मैं सवाल करती हूँ उस अल्लाह से जो बहुत बड़ा है, अर्शे अजीम का रब है। सवाल क्या है? आई ये के यशफिया का, वो शिफा दे तुझको। कितना सिंपल है। मांगा क्या आपने उसके लिए शिफा? मांगी किससे? अल्लाह अल अजीम, रब। कौन सा? रब्बिल अर्शिल अजीम, यानी अल्लाह ताला की बड़ाई, उसकी मैग्निफिकेंस, अल्लाह ताला को बड़ा बनाना और उसको उसकी कुदरतों का एहसास दिलाना, और बस उसके बाद आपके लिए शिफा मांग लेना। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, आसान सा काम है, लेकिन करने वाले को अजर भी मिलता है और अल्लाह के हुक्म से मरीज को शिफा भी मिलती है। करेंगे ये? जरा मेरे बगैर सब पढ़े मिलकर इसको। अस्सलुल्लाहल अजीमा रब्बल अर्शिल अजीमी अय्यश्फियका, ठीक है? इसको याद करेंगे, बहुत आसान है वैसे भी, कोई मुश्किल लफ्ज नहीं है इसमें। दूसरी दुआ, मरीज अपने हाथ को तकलीफ वाली जगह पर रखे, 3 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद ये दुआ 7 मरतबा पढ़े। क्या है अल्फाज? आऊज़ु बिल्लाही व कुदरतिही मिन शर्री मा अजिदु व अहाज़िरु। तर्जमा क्या है इसका? आऊज़ु लिख लीजिए आप लोग अपनी बुक्स पे, इसी के नीचे नीचे लिखेंगे तो फायदा होगा। आऊज़ु मैं पनाह में आती हूँ, बिल्लाही अल्लाह की, वक़ुदरतिही और उसकी कुदरत के, यानी अल्लाह और उसकी कुदरत की पनाह में आती हूँ। मिन शर्री उस चीज के शर से, मा अजीदू जो मैं पाऊँ, वजदा कहते ना पाने को वजूद, तो उसी से अजीदू, माँ जो अजीदू मैं पाऊँ या जिसको मैं महसूस करूँ, वह और वहादिरू जिससे मुझे खौफ आए। हजर कहते खौफ को, सूरह बकरा में हम पढ़ते हैं ना हजर अल मौत, वही चीज़ है इधर, वहादिरू और जिससे मुझे खौफ आए। पूरा तर्जमा क्या होगा? मैं अल्लाह ताला और इसकी कुदरत की पनाह में आता हूँ इस चीज़ के शर से जो मैं महसूस कर रहा हूँ या जिससे मुझे खौफ है। अब आप देखिए, अगर मरीज खुद ये पढ़ता है ना, इसका फ़ायदा दूसरे के पढ़कर सुनाने से ज़्यादा होगा। और मुश्किल लफ्ज़ नहीं है, एक दफ़ा दोहराइएगा। आऊज़ु बिल्लाही वकुदरतिही मिन शर्री मा अजीदु व अहादिरु। तो ये दुआ पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसको शिफा देगा। कितनी दफा पढ़नी है? तीन दफा बिस्मिल्लाह और 7 दफा ये दुआ। अच्छा, आप कहेंगे 3 की जगह 5 दफा कर लूं, क्या हर्ज है? तो 7 को मैं 17 बार कर लूं। हर्ज क्या है कि अल्लाह के नबी ने जो अल्फाज सिखाए हैं वो इतने ही दफा के, और ये सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, 1728 नंबर की हदीस है और जिल्द 4 है। डॉक्टर कहे आपको कि आपने एक गोली सुबह खानी है, एक शाम को खानी है, आप कहते धोखा लेती हूँ। डॉक्टर कहता है एक गोली सिर्फ सुबह में खानी है, आप कहते नहीं सुबह दोपहर शाम खा लूँ मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। नहीं फायदा होता ना, छोटी छोटी बातों में हम डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को नज़र में रखते हैं ना। तो लिहाजा इस तरह भी हमें दुआओं की कमी बेशी नहीं करनी। आपका अपना अमल है, आप जब मर्जी कोई काम करें, लेकिन जब आप एक दवा समझ के इसको पढ़ रहे हैं तो फिर आप कोशिश करें कि जो अल्लाह के नबी ने कह दिया उसी पे जम जाएंगे। ठीक है, तीसरी दुआ हम पढ़ेंगे मिलके। अल्लाहुम्मा
अल्लाहुम्मा
रब्बन्नासी
रब्बन्नासी
अज़हिबिल बअस,
अज़हिबिल बअस
इसको बाज़ लोग थोड़ा सा सही नहीं पढ़ पाते इसलिए तवज्जो रखिएगा, अज़हिबिल बअस
अज़हिबिल बअस
वशफी
वशफी
अंतश शाफी
अंतश शाफी
ला शिफा
ला शिफा
इल्ला
इल्ला
शिफाउका
शिफाउका
शिफाअन
शिफाअन
ला
ला
युगादिरु
युगादिरु
सकमा।
सकमा।
तर्जमा इसका देखिएगा, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, रब्बन्नासी लोगों के रब, अज़हिबिल बासा दूर करता है बीमारी को, या अज़हिब दूर कर दे बासा बीमारी को तकलीफ को, वशफी और शिफा दे, अंत शाफी तू ही शिफा देने वाला है, ला शिफा नहीं कोई शिफा, इल्ला सिवाय या मगर, शिफा उका तेरी शिफा के, शिफाअन ऐसी शिफा दे, ला युगादिरु के ना छोड़े, सकमा बीमारी, यानी ए अल्लाह जो लोगों का रब है तकलीफ दूर कर दे और तू शिफा अता कर दे, तू ही शिफा देने वाला है, तेरे अलावा किसी के पास शिफा नहीं है, ऐसी शिफा जो बीमारी बाकी ना छोड़े। आपको एक एक लफ्ज़ पढ़ के अल्लाह तआला पे प्यार आ रहा है। आप अपनी जिंदगी में देखिए कि आज कितने लोग बीमार हैं, हम अपने ऊपर ही लेकर सोचें, अक्सर बीमार रहते हैं, क्यों रहते हैं? अल्लाह को कहिए कि अल्लाह आपका नाम अशाफी है, आप मेरी मदद कर दें। जितना आपका अल्लाह ताला की कुदरतों और उसकी खूबियों पर यकीन बढ़ता जाएगा, आप उतना ही महसूस करेंगे कि आपकी बीमार होने की जो मिकदार है, यानी क्वांटिटी और क्वालिटी, वो कम होती जा रही है। दिन ब दिन आप अपने आप को सेहतमंद महसूस करेंगे। अच्छा, कभी बैठ के ना इस पे अपने माइंड को सेट किया करें, काउंसलिंग करें। मैं बचपन में बीमार रहती थी, बच्चे तो रहते ही हैं बीमार, फिर लड़कपन आया, जवानी आई, क्या मैं बीमार होती थी? नहीं इतना तो नहीं होते थे। फिर जब बिल्कुल जवान हो गए फिर भी ठीक थे। शादी हुई तो क्या उस वक्त जहन में था कि ये बच्ची बहुत बीमार रहती है? ऐसा भी नहीं था। तो फिर बीमारी कब आती है? अच्छा, शादी के बाद बीमारियां आनी शुरू हो गई। अक्सर लोग शादी के बाद बीमार होना शुरू हो जाते हैं। सच पूछे, प्रेगनेंसी को बहुत सारे लोग बीमारी समझते हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए, साइकोलॉजिकल बोझ दिमाग पे ले लेते हैं। उसने ये कहा, बसर में दर्द है। अच्छा, एक चीज जो आपने नहीं महसूस की होगी तो नहीं की होगी, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने दो तीन सिस्टर्स को देखा। ये कोई फतवा नहीं है ना, ये कोई हदीस है, लेकिन ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। जो बीमारी या स्टाइल सास का होता है ना, वही आने वाले दिनों में बहू का भी हो जाता है। हद तक कि मैं ऐसी बहू को जानती हूँ कि जैसे सास चलती है ना, जरा थोड़ा सा कंधों को झुका के, वो भी अब ऐसे चलना शुरू हो गई। गई तो सास अमूमन ये कहती थी, मेरा सर सो रहा है, मुझे सर में दर्द, सर सो रहा है या सुन्न हो रहा है जिसम। तो अब वो सास बहू वहाँ 20-25 साल रह गई, अब वो भी सास बन गई, तो अब वो भी ये कुछ कहती है। मैंने जो चीज़ फील की है ना, कि जब तक हम खुद को काबू में ना रखें ना, हम अपने माहौल से बहुत जल्दी मुतासिर होते हैं। मैं आपको इसकी मिसाल देती हूँ। मसलन हम बाहर से आए, बाहर ठंड लगी या कुछ हुआ, नहीं अंदर हम सब, मेरे को ना सर्दी लग रही है ना, जो ही आप मेरे मुंह से जुमला सुनेंगे ना, आप सबको भी सर्दी लगनी शुरू हो जाएगी। गर्मी लग रही है ना, सीना आ रहा है ना, बहुत सारे लोग उसी तरह फील करते हैं। मैं कहती हूँ, आज घुटन नहीं है, दिल नहीं घबरा रहा? आप सोचिए, हाँ मेरा भी घबराना चाहिए। यानी हम अपने माहौल से बहुत असरअंदाज होते हैं। तो सेहतमंद लोगों में रहे, वो लोग जो अपने आप को बहुत बीमार बीमार हर वक्त कहते हैं ना, आप अवॉइड करें उनको। रियली ये मैं ये नहीं कहती कि बीमार कोई नहीं होता और कहता है मैं बीमार हूँ, लेकिन इसका कंट्रोल मेरे आपके माइंड में होता है। तो बहर अपने लिए भी ये दुआएं बहुत अच्छी हैं। अच्छा, मुझे एक बात अभी भी पता है कि इस किताब के साथ जो आप में से अक्सरियत ने करना है, जो अक्सर हमारी आंटीज बहुत करती हैं, बूढ़ी आंटियाँ या आप दादीज, उन्होंने अपनी वो दुआएं की जो किताबें रखी होती है ना, उसमें एक किताब का इजाफा कर लेना, फिर सुबह बैठ के ना ये सारी किताब पढ़ छोड़नी है। हमारी नानी ऐसी थी, सुबह उठ के शुरू हो जाती थी, एक किताब खोली, शुरू से आखिर तक सारी दुआएं पढ़ दी। तो कहती थी, आज किसी वजह से घर में 19-20 रह मसरूफियत हो जाए ना, ये बच्चे आके बैठ के कहना मेरी दुआएं पढ़ने का वक्त चला गया। नानी मत, दुआएं पढ़ते नहीं हैं, दुआएं मांगते हैं, और नहीं पढ़ेंगे तो मांगेंगे ना। तो बहुत सारों ने बस इसको पढ़ना शुरू हो जाना, मांगना। और दुआ जब मांगे ना, तो अब आप इसको जरा तरीका तो देखे ना। मसलन आप पहली दुआ जब ने किया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहें, जरा फीलिंग्स दें। मैं सवाल करती हूँ, अपने अंदर एक बैगिंग की कैफियत लाए, मैं मांग रही हूँ, मेरे हाथ उठे हुए हैं, किसके सामने हूँ मैं? अल्लाह के सामने हूँ। कौन सा अल्लाह अलअजीम जो बहुत बड़ा है? कितना बड़ा, रब्बुल अर्शिल अजीम। फिर अल्लाह का एक बहुत बड़ा अर्श ज़हन में लाएं, फिर उधर खड़े होकर कहें, या शफिया, अल्लाह इसको इसको शिफा दे दे। आप देखेंगे जब आप अपनी फीलिंग्स के साथ मांगते हैं ना, तो दुआ आपके दिल की पुकार बन जाती है। और अगर आप कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ये शफिया का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बुल अर्शिल अज़ीम, 7 दफा पढ़ना, चुप, बीच में बोलना भी नहीं, पता नहीं बाजी ने बताया था बीच में सांस भी लेना कि नहीं लेना। और अगर आंखें खोली इधर उधर देखा, तो वो पता नहीं वजीफा ही ना टूट जाए। कई लोग वजीफा कर रहे हो, बीच में बोलते ही नहीं है, कहते नहीं मेरा वजीफा खत्म हो जाएगा। हमारा एक बाबा था, गांव से आया हुआ था, जैसे लोग पाकिस्तान में आते हैं, तो हमारे घर में ही बैक पे सर्वेंट क्वार्टर्स थे, उसमें रहता था। तो वो बड़ा टिपिकल बाबा था ना, तो माशाल्लाह उम्र भी उसकी लंबी थी, पतला एक्टिव बड़ा था ना। तो साल में एक दफा वो अलसी बनाता था। आप में से बड़े लोगों को तो पता ही होगा अलसी क्या होती है, हमने खाई नहीं कभी। इतना बड़ा दाबड़ा बड़ कपड़े धोने वाला ना, उसका अलसी बनानी, देसी घी डालना, अलसी डालनी, जो कर करा के ना। तो फिर वो उसको ना ऐसे हाथों से बुक भर भर के खाना। फिर उसके बाद क्या करता था, जो सर में आपको मजे की बात है, करिएगा नहीं, लेकिन वो क्या करता था, मोटी चादर लेके ना अपना पूरा मुंह सर कपड़ा लपेट के ना कंबल में घुस जाता था। तो कभी बाबे को आवाज देनी, बाबा जी अदर को आना नहीं, ऐसर कट जाएगा। कहता था कि मैं आप बोलूंगा ना, तो जो मेरे अंदर एनर्जी गई ना, वो बाहर आ जाएगी, सांस भी अपना अंदर खुद ही ले रहा है। यानी उसका ख्याल था कि अगर साल में एक बार ये मैंने अलसी का खा लिया ना, तो मैंने पूरा साल सेहतमंद रहना है। तो वो क्या करते थे कि बीच में बात नहीं करते थे, और खाना भी तब है कि, और अगर मजबूरन किसी ने बुला लिया, बाबा जी को बोलना पड़ा, कहता मेरा असर ही चला गया, जो तुसी मेरी अलसी जाया करा देती। तो वो बड़े लोगों की बातें थी ना। तो आपका मेरा अपना कितना ज्यादा खुशू है, ये देखें बस, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इससे आपको खुद ब खुद फर्क महसूस होगा। चलिए, पूरी जान के साथ तीनों दुआएं मिलके पढ़ते हैं। मैं भी साथ ही हूँ, आप भी साथ ही, असलुल्लाह से शुरू करते हैं। शुरू कीजिए, अस्सलुल्लाह अल अजीम रब्बल अर्शिल अजीमी अय यशफिया का, أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کو ساتھ ساتھ یاد کرنے نہ بنائیں، اتنا کافی ہے، مقصد یہی ہے کہ یہ دعائیں آپ کو یاد ہو جائیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ.